ये हफ्ता वार बाइबल का दर्शीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिजा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 30 अगस्त 2020 बरोज इतवार हफ्ता के अख्ताम पर आपके मतलब की गर्ज से तैयार किया गया है। मजमून मसीह यसु, सुनहरी मतन यूहन्ना। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। जवाबी मतालिया यसाया। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के अस्सा को ऐसा तोड़ा जैसा मिद्यान के दिन में किया था। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रबुल फवाज की गयूरी ये करेगी। खुदाम ने याकूब के पास पैगाम भेजा और वो इसराइल पर नाजल हुआ। दर्सीवाज बाइबल में से यसाया। देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूं, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश होता है। मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो रास्ती से अदालत करेगा, वो मानदा ना होगा और हिम्मत ना हारेगा जब तक कि अदालत को जमीन पर कायम ना कर ले। जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे। यसाया। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सेहून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सितायश का किलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर हो। मरकस यसूसी इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। मरकस और वो इबादत खाना में फिर दाखिल हुआ और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाएं। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना? वो चुप रहे। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्से से नजर करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया, और वो उसके पास चले आए, और उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें और वो उनको भेजे के मुनादी करें और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। और फकीर जो यरूशलम से आए थे और कहते थे कि उसके साथ बिलजबूल है, और ये भी कि वो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है, वो उनको पास बुलाकर उनको तमसीलों में कहने लगा, शैतान को शैतान किस तरह निकाल सकता है? और अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम नहीं रह सकता। अगर शैतान अपना ही मुखातब होकर अपने में फूट डाले तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता, जब तक कि पहले वो उस जोरावर को ना बांध ले, तब उसका घर लूट लेगा। यूहन्ना। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। यूहन्ना। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जानेंगे? यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें मैं जो तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। यूहन्ना। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म ये है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दर्सी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। ओह, मगर मसीह सच्चाई जिंदगी का रूह और फानी बशर का दोस्त कैदखानों के दरवाजों को खोल सकता और कैदियों को रिहा कर सकता है। मसीह खुदा का इलाही इजहार जो मुजस्म गलती को नेस्त करने के लिए बदन की सूरत में आता है। मसीहा के अंदर मसीहाई के अंसर ने उसे राह दिखाने वाला सच्चाई और जिंदगी बनाया। अब्दी सच्चाई इसे तबाह करती है जो बशर को गलती से सीखा हुआ दिखाई देता है, और बतौर खुदा के फर्जंद इंसान की हकीकत रोशनी में आती है। यीशु ने मसीह की शिफा की रूहानी बुनियाद पर अपना चर्च कायम किया और अपने मिशन को बरकरार रखा। उसने अपने पैरोकारों को सिखाया कि उसका मजहब इलाही असूल था जो खता को खारिज करता और बीमार और गुनाहगार दोनों को शिफा देता था। यीशु सबर के साथ और सच्चाई की हस्ती को जाहिर करते हुए अपनी तालीम पर कायम रहा। इंसानी शबी अपनाते हुए, यानी जैसा कि फानी नज़र को दिखाई देता है, इंसानी माँ के पेट में हमल लेते हुए यीशु रूह और जिस्म के माबैन, सच्चाई और गलती के माबैन दरमियानी था। इलाही साइंस की राह को वाज़ह करते और जाहिर करते हुए वो उन सब के लिए निजात की राह बन गया जिन्होंने उसके कलाम को कबूल किया। बशर उससे ये सीख सकते हैं कि बदी से कैसे बचा जाए। हकीकी इंसान का साइंस की बदौलत अपने खालक से ताल्लुक इस्तवार करते हुए बशर को सिर्फ गुनाह से दूर होने और मसीह यानी हकीकी इंसान और खुदा के साथ उसके ताल्लुक को पाने और इलाही फर्जंदगी को पहचानने के लिए फानी खुदी से नज़र हटाने की ज़रूरत है। हमारे मालिक ने कहा, किसी जोरावर शख्स के घर में कोई कैसे घुसकर उसे लूट सकता है जब तक के पहले उसके हाथ न बांध ले। दूसरे अल्फाज में, मैं जिस्म को कैसे शिफा दे सकता हूँ बगैर नाम नहाद अक्ल से शुरू किए जो बराह रास्त जिस्म को कंट्रोल करता है। जब एक बार बीमारी इस नाम नहाद अक्ल में नेस्त कर दी जाती है तो बीमारी का खौफ दूर हो जाता है और इसीलिए बीमारी का इलाज भी मुकम्मल तौर पर हो जाता है। फानी बशर जोरावर आदमी है जिसे ताबे रहना चाहिए इससे कबल के इसका असर सेहत और इखलाकियत पर से ख़त्म किया जाए। इस गलती को फतह करने से हम जोरावर आदमी की चीज़ों यानी गुनाह और बीमारी को लूट सकते हैं। इंसान सेहत की हम मांगी पाते हैं सिर्फ तब जब वो मुखालफत को तर्क करते हैं, इलाही अकल की बालादस्ती को पहचानते और अपने मादी अकायद को छोड़ते हैं। बीमारी की शबी को मायूस कन ख्याल से तल्फ करें इससे पहले कि ये शाऊरी सोच उर्फ बदन में ठोस शक्ल इख्तियार करे, तो आप बीमारी की तरक्की को रोक सकेंगे। ये काम आसान हो जाता है अगर आप ये समझ लें कि हर बीमारी एक गलती है और इसकी ना कोई अलामत और ना कोई किस्म है माँ सिवाय इसके जो फानी अकल इसे सौंपती है। गलती या बीमारी से सोच को ऊंचा करने से और सच्चाई के लिए मुसलसल जद्दोजहद करने से आप गलती को नेस्त करते हैं। यीशु ने इजहार की बदौलत जिंदगी का तरीकाकार सिखाया ताकि हम ये समझ सकें कि कैसे इलाही असूल बीमार को शिफा देता, गलती को बाहर निकालता और मौत पर फतेहमंद होता है। किसी दूसरे शख्स की निस्बत जिसका असल कम रूहानी हो, यीशु ने खुदा की मिसाल को बहुत बेहतर अंदाज में पेश किया। खुदा के साथ उसकी फरमाबरदारी से उसने दीगर सभी लोगों की निस्बत हस्ती के असूल को ज़्यादा रूहानी जाहिर किया। इसी तरह उसकी इस नसीहत की ताकत है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। उसकी इंसानी जिंदगी की अजमत के वसीला उसने इलाही जिंदगी को जाहिर किया। उसके खालिस खलूस की वसत के वसीला उसने मोहब्बत की वजाहत की। सच्चाई की फरावानी से उसने गलती को फताव किया। दुनिया ने ये ना देखते हुए उसकी रास्तबाजी को तस्लीम ना किया, बल्कि ज़मीन को वो हम आहंगी नसीब हुई जिसे उसके जलाली नमूने ने मुतारफ किया था। उसकी तालीम और नमूने की पैरवी करने के लिए कौन तैयार है? सब को जल्द या बदीर मसीह यानी खुदा के हकीकी तसव्वुर में खुद को पवस्त करना होगा। यीशु की इंतहाई इंसानी कुर्बानी की हिदायत ये थी कि वो अपना खरीदा हुआ अजीज़ ख़जाना गुनाह आलूद इंसान के खाली गोदामों में आज़ादी के साथ उंडेल ले। उसके इलाही इख्तियार की गवाही में उसने ये सबूत फराहम किया कि ज़िंदगी, सच्चाई और मोहब्बत बीमारी और गुनाहगार को शिफा देते हैं और अकल के वसीला ना के मादे के वसीला मौत पर फतह पाते हैं। इलाही मोहब्बत का ये सबसे बुलंदतरीन सबूत था जो वो पेश कर सकता था। यीशु नासरी ने इंसान की बाप के साथ यगानगत को बयान किया और इसके लिए हमारे ऊपर उसकी लामतनाही अकीदत का कर्ज है। उसका मिशन इनफरादी और इज्तमाई दोनों था। उसने ज़िंदगी का मुनासिब काम सर अंजाम दिया, ना सिर्फ खुद के इंसाफ के लिए बल्कि इंसानों पर रहम के बाइस, उन्हें ये दिखाने के लिए कि उन्हें अपना काम कैसे करना है, बल्कि ना तो उनके लिए खुद कुछ करने या ना ही उन्हें किसी एक जिम्मेदारी से आज़ाद करने के लिए ये किया। इंसान के हकूक़ को समझते हुए हम तमाम मजालम की तबाही से मुतलक पेशबीनी करने में नाकाम नहीं हो सकते। गुलामी इंसान की जायज़ हालत नहीं है। खुदा ने इंसान को आज़ाद पैदा किया। پولوس نے کہا، میں آزاد پیدا ہوا۔ سب انسانوں کو آزاد ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ محبت اور سچائی آزاد کرتے ہیں، لیکن بدی اور غلطی غلامی کی جانب لے جاتے ہیں۔ کرسچن سائنس آزادی کو اونچا کرتی اور چلاتی ہے کہ میری پیروی کریں، بیماری، گناہ اور موت کے بندھنوں سے بچیں۔ یسوع نے راستہ متعین کیا ہے، دنیا کے باسیوں، خدا کے فرزندوں کی جلالی آزادی کو قبول کریں اور آزاد ہوں۔ یہ آپ کا الہی حق ہے۔ یہ ممکن ہے، ہاں، یہ ہر بچے، مرد اور عورت کی ذمہ داری اور استحقاق ہے کہ وہ زندگی اور سچائی، صحت اور پاکیزگی کے اظہار کے وسیلہ مالک کے نمونے کی کسی حد تک پیروی کریں۔ مسیحی لوگ اس کے پیروکار ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر کیا وہ اس کی پیروی اسی طرح کرتے ہیں جیسے اس نے حکم دیا ہے؟ آپس میں محبت رکھیں۔ پہلا یوحنا 3:23۔ الہامی مصنف کی سب سے سادہ اور گہری نصیحت ہے۔ خدا کی تمجید ہو اور جدوجہد کرنے والے دلوں کے لیے سلامتی ہو۔ مسیح نے انسانی امید اور ایمان کے دروازے سے پتھر ہٹا دیا ہے، اور خدا میں زندگی کے اظہار اور مکاشفہ کی بدولت اس نے انسان کے روحانی خیال اور اس کے الہی اصول یعنی محبت کے ساتھ ممکنہ کفارے سے انہیں بلند کیا۔ مسیح کی شریعت ہمارے قوانین پر فوقیت رکھتی ہے، بس آئیں مسیح کی پیروی کریں۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے ہر روز خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔